हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा श्री गौरनिताय श्री पांचशील भक्तवृंद और दामोदर देश के हंस गोकुल प्रभु और चारु माता जी के संग में जो मनीष सविता आदि भक्त हैं उनका, और फेसबुक में जो भाग्यशाली श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में दिव्य ज्ञान जो मुक्ति का मार्ग बताने वाला है उसके अंदर अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश श्रीमद् भागवत में अपने प्रिय भक्त भक्त राज उद्धव को जो दिया है उसके 7वें अध्याय में हमने 8 गुरुओं से शिक्षा, प्रकृति के 8 गुरुओं से शिक्षा का वर्णन 7वें अध्याय में था। 5 तो तत्वों से शिक्षा ली, पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि, फिर चंद्रमा रवि सूर्य, ये हो गए 7, और 8वां था कपुतर, कबूतर और कबूतरी। तो असल में हमने सूर्य की शिक्षाएं जो है उसका एक श्लोक जो लास्ट वाला था उसको ऐसे बीच में रखा था असल में, जिसमें सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है खिड़की के ऊपर, आईने के ऊपर, पानी में, तेल में, कोई भी चमकती चीज में, तो उसके माध्यम से सूर्य का पता लगता है। उस प्रतिबिंब को देख के सूर्य का पता लग सकता है। ऐसे नाना प्रकार के शरीरों के अंदर बैठे हुए आत्मा और उसके साथ उसके नित्य शुभ चिंतक परमात्मा का भी अनुभूति करके पता लगाया जा सकता है। एक बात तो ये उससे शिक्षा है। दूसरी शिक्षा है कि एक ही सूर्य अलग जगहों पे प्रतिबिंब होता है तो उससे सूर्य कटा नहीं लगता है, कि कोई अलग नहीं है, ज्यादा नहीं है, एक से अनेक नहीं है। ऐसे भगवान एक भी सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं तो उससे वो विभाजित नहीं है। तीसरी बात है, सूर्य के प्रकाश को कभी कभी बादलों से ढका हुआ देखने के कारण कुछ लोग कहते हैं सूर्य प्रकाश ही है, क्योंकि बादल आ गए हैं, सूर्य को रोक दिया है, प्रकाश को, सूर्य का स्वयं का दर्शन नहीं होता है तो उसको प्रकाश ही मान लेते हैं। तो ऐसे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भगवान को केवल ब्रह्म ज्योति ही मानते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि के ऊपर वो बादल छाया हुआ है जिससे ऊपर जाके वो सूर्य के अस्तित्व का प्रकाश नहीं देख सकते हैं। कुछ केवल सूर्य को ही देखने को सब कुछ मानते हैं, जैसे योगी लोग हैं, लेकिन जो भक्त लोग हैं वो शास्त्र प्रमाण से सूर्य के अंदर जो सूर्य नारायण है और जो आदित्य है, आदित्य का पुत्र है, और जो सारे ग्रहों का राजा है, सकल ग्रहणाम राजा, और भगवान का वो शिष्य है, तो इस विचार के ऊपर विश्वास करने के लिए अति बुद्धि की आवश्यकता है। तो ये सूर्य से कुछ शिक्षाएं थी। उसके बाद कपोतों के कल हमको ये जो 8वीं शिक्षा के ऊपर वर्णन करना था, किसी कारण से हम आपके साथ केवल सुन सके। आप लोगों ने बहुत अच्छा सारे संस्कृत श्लोकों का पाठ किया, केवल हम 2 श्लोकों को, पहले और अंतिम श्लोक को पढ़ के हम दूसरे 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो कपोत से शिक्षा जो पहली है वो है, न अति स्नेह प्रसंगो वा, न अति स्नेह। देखो, स्नेह करना चाहिए लेकिन अति स्नेह नहीं करना चाहिए। जैसे किसी चीज की, किसी भी चीज का अति जो होता है उसमें हमेशा समस्या होती है। तो अति स्नेह प्रसंग का मतलब प्रकृष्टेन रूपेण संग, एक संग, एक पूर्ण रूप से संग। इसका मतलब एक ही चीज से संग करना, दूसरी चीज से संग करने का जो समय है उसको भी एक ही चीज के संग में लगा देना। प्रकृष्टेन रूपेण संग का मतलब पूर्ण रूप से संग। वा कर्तव्य क्वापि केंचिद, न किसी से करना चाहिए न किसी को करना चाहिए, किसी से और किसी को, किसी से किसी को किसी, ये जो दो शब्द हैं, क्यों नहीं करना चाहिए अति संग, अति पूर्ण रूप से संग क्यों नहीं करना चाहिए। कुर्वन विंदेत, अगर करेंगे तो अनुभव होगा, करेंगे तो हमको उसका एक चीज का एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस होगा मतलब हमारे को उसका मुशाहिदा होगा, उसका हमको अनुभूति होगी। किस चीज की? संतापम, संताप का। ये भी सम्यक ताप, सम्यक ताप मतलब ताप तो पाप का फल होता है जनरली, पाप करेंगे तो ताप सहना पड़ेगा। ताप का मतलब ये संसार में जैसे दुख है, ताप है, आदि भौतिक ताप है, आध्यात्मिक ताप है, ऐसे उसको पूर्ण रूप से दुख की ताप संताप की अनुभूति करनी पड़ेगी। बोला ये कहाँ से सीखा? तो अवधूत जी कहते हैं कपोतो एव, हमने ये कपोत से सीखा, एक कबूतर के जोड़े से सीखा। तो वो कैसे थे? दीन धीन है, धी है दीन का, और धी का मतलब बुद्धि, और दीन का मतलब है कम, कम बुद्धि वाले पक्षियों से, कबूतर और कबूतरी से ये शिक्षा ग्रहण की मैंने कि अति स्नेह किसी से भी, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, वस्तु भी क्या, गाड़ी से अधिक स्नेह करेंगे थोड़ा सा खराच आ गई तो भी वो दिल में दर्द लगे होने लगेगा। तो अति स्नेह किसी से भी करेंगे, किसी विषय से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, तो निश्चित रूप से वो दुखदायी ही परिणाम के रूप में अनुभूति कराएगा। फिर पूरी कथा तो आपने कल पढ़ ली है, सुन ली है, और उस पूरी कथा में गृहस्थियों को विशेष रूप से ये शिक्षा दी गई है। गृहस्थियों के लिए इस शिक्षा से, वो शिकारी आया जिसने कबूतर और कबूतरी के बच्चों को जाल में फंसा लिया, और कबूतरी वापस जैसे अन्न लेकर और उनके लिए जो लेने गए थे भोजन, वो दोनों आए और उनको देख के कबूतरी तड़प के उसमें कूद पड़ी, और फिर कबूतर भी विलाप करता, विलाप करना मतलब रोते रोते कुछ अपने दुख को बोलना, उसको विलाप कहते हैं। केवल रोने को रोदन कहते हैं, लेकिन रोते रोता भी जाए और अपना दुख भी गाता जाए तो उसको विलाप कहते हैं। तो वो विलाप करने लगा, मैं विदुर हो गया, मैं पत्नी चली गई, बेटे चले, बच्चे चले गए। तो ये शिकारी का उपमा दी गई है काल से। ये शिकारी कौन है? ये काल का जाल है जिसके अंदर संसार से हरेक को उसमें फंसना पड़ता है। तो किसी वस्तु पर या विशेष स्नेह होगा तो उस समय बहुत ज्यादा पीड़ा होगी, इसलिए इतना स्नेह करना चाहिए जिससे व्यवहार चल जाए। तो भाई अति स्नेह कहाँ करना चाहिए? कहीं तो करना चाहिए। बोला वो अगर करना है तो अंतिम श्लोक, इसका पूर्णाहुति का जो श्लोक है उसको पढ़ते हैं अब। यह प्राप्य मानुषम लोकम, जिस भाग्यशाली को मानुष जन्म इस धरती के ऊपर, मानुष लोक में जन्म मिला है, और विशेष रूप से केतन महाप्रभु कहते हैं भारत भूमि ले है, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो आप पहले अपने जन्म को सार्थक करो, सार्थक मतलब जो उसका असली लाभ है उसको प्राप्त कर लो, और आपको वो लाभ प्राप्त हो जाए आप तो फिर आप दूसरों के भले के काम में लग जाओ। तो वो लाभ क्या है मानव जन्म का? मुक्ति द्वारम अपावृतम, मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। अपावृतम का मतलब खुला हुआ है मुक्ति का द्वार। मुक्ति का द्वार माने किससे मुक्ति का? संताप से मुक्ति का, दुख से मुक्ति का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति का। ये 84 लाख योनियों में से बाकी सब भोग योनि है, केवल मानव योनि में इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने का खुला हुआ दरवाजा है। एक उदाहरण देते हैं कि एक ऐसा बड़ा हाल हो जिसमें 84 लाख दरवाजे हो लेकिन सबके ताला हुआ, सबके ऊपर ताला लगा हुआ है, केवल एक दरवाजा खुला है और अंदर अंधकार इतना है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि तेरा हाथ दरवाजे दीवार के रक्त के ऊपर रख देते हैं, तुम चलते जाओ, एक दरवाजा बंद दूसरा बंद आएगा लेकिन एक खुला हुआ है, जब खुला आए तो बाहर निकल जाना, फिर तुम इस अंधकार से निकल जाओगे और बाहर खुली हवा खाना, प्रकाश में जीना। तो वो चलने लगा, दीवार के ऊपर हाथ रखा हुआ है, एक दरवाजा बंद आया, दूसरा बंद आया, तीसरा बंद आया, चल रहा है। जिस वक्त वो खुला दरवाजा आया उस वक्त उसको हाथ में खारिश हुई और उस खुजली करने के लिए उसने हाथ दीवार से हटा दिया और पांव आगे चल गए, खुला हुआ दरवाजा उसके भाग्य से निकल गया और दोबारा हाथ जैसे रखा तो दीवार के ऊपर हाथ आया और दूसरा बंद दरवाजा मिला। ऐसे ये मानव जन्म खुला हुआ दरवाजा है मुक्ति का, मुक्ति द्वारम अपावृतम। लेकिन खुजली क्या है? इंद्रिय भोग की भावना, कंडू ना कहते हैं इसको, कंडू ना इव, कंडू कहते हैं खुजली को। ये भोग की वासनाएं हैं, ये खुजली मानव जन्म में अगर हो गई तो ये मुक्ति का द्वार हमारे हाथ से निकल जाएगा। ग्रहेशु खगवत सक्तस, किससे निकल जाएगा? मानव जन्म लेने के बाद भी खगशु पक्षी की तरह, उस कबूतर और कबूतरी की तरह क्या कर रहा था? ग्रहेशु, एक ग्रहेशु की एक और परिभाषा सुनेंगे, ग्रह और ईशु। ईशु वैसे कहते हैं बाण को, एरो जो होते हैं ना, तीर बाण, उसको ईशु कहते हैं। और ग्रह जैसे शनि ग्रह है, जैसे और क्रूर ग्रह हैं, अपना क्या नाम है जो ग्रहण लगाते हैं, ग्रहण लगाने वाले ग्रह, क्रूर ग्रह, ऐसे आग्रह करके केवल भोग के लिए और ग्रहों से पीड़ित हुआ, केवल भोग में लगा तो इन पक्षियों की तरह वत सक्तस असक्त, आसक्त जो थे। तो ये आसक्ति किसके लिए होनी चाहिए? भगवत गीता में भगवान मई आसक्त मनहा पारथ योगम युंजम मदाश्रय, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी ये आसक्ति मेरी ओर होनी चाहिए, तेरा ये प्रेम और स्नेह मेरे लिए होना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे हृदय में इस प्रेम और स्नेह को भर के भेजा है। इसको अगर संसार में बंटवारा कर दोगे तो हमेशा उस अति स्नेह के कारण दुख पाओगे और ये स्नेह तुम्हारा मेरी ओर जिसके लिए ये डाला गया है मोड़ लोगे तो सारे दुख से मुक्त हो जाओगे। तमारूढ़च्युतम विदोह, अंतिम लाइन कहती है तम आरूढ़, आरूढ़ कहते हैं ऊपर चढ़ने को, जैसे मानव जन्म सबसे ऊपर का जन्म है, ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊपर का जन्म है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। वो एक महात्मा उदाहरण देते थे, देखो पेड़ हैं, कहाँ से दाना खाते हैं और पानी पीते हैं, वो नीचे जड़ से पानी लेते हैं और ऊपर खाना जाता है। ऐसे पक्षी बक्षी भी सर नीचे करके खाते हैं, पाना नीचे से लेते हैं और फिर ऊपर उड़ते हैं, केवल एक मानव है जो ऊपर से खाता है और उसका नीचे से जाता है। तो इसका मतलब ये अंतिम आप लक्ष्य के ऊपर पहुँच गए हैं, इसके बाद सिर्फ भगवत धाम जाने का एक सौभाग्य है, अगर उसको प्राप्त कर लिया तो ठीक है, ये मुक्ति द्वार खुला है उसमें अगर प्रवेश किया तो अच्छा है, नहीं तो फिर च्योतम च्युतम का मतलब गिरेगा, इसके बाद ऊपर कुछ नहीं है, वापस पतन होगा। और वो पतन कहां होगा ये कुछ मालूम नहीं है। विदुः जान लो इस बात को, विचार कर लो कि ऐसा दुर्लभ मानव जन्म मिला है, ये अर्थदम है, बड़े लाभदायक है थोड़े से समय के लिए, है स्थाई नहीं है लेकिन बहुत बड़ा लाभ देने वाला है, इसलिए इसके अंदर अति स्नेह किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से नहीं करना चाहिए। घर गृहस्थी में बहुत अच्छा उपदेश है सातवें स्कंद भागवत के 14वें अध्याय में कि भगवान वासुदेव के अवतार की कथाओं का भक्तों के संग में श्रवण करना चाहिए। जैसे भागवत भगवान के अवतार की कथा है, इससे हमारा स्नेह जो है भगवान की तरफ बढ़ेगा, और जितना स्नेह और जितना प्रेम और जितना आकर्षण भगवान की कथा, भगवान के भक्त, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का रूप, भगवान की लीला की ओर बढ़ेगा, उतनी मात्रा में संसार की प्रति हमारा स्नेह और आसक्ति कम होगी, और जितनी कम होगी उतना संकट, दुख, ताप, संताप कम होगा। तो इसलिए गृहस्थों के लिए सबसे मुख्य शिक्षा भगवान हरि की कथा, हरि भक्तों के संग में भागवत, भागवत गीयते भागवत स्थाने, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत का श्रवण करना चाहिए भागवत पुरुषों के संग में। तो यहां ये हमारे कल के जो प्रसंग था उसका सारांश है। काल रूपी बहेलिया शिकारी सबके लिए जाल डाल के बैठा है, जिसका स्नेह श्री कृष्ण से है, अति स्नेह श्री राधा श्याम से है, राधा या भगवान के किसी भी रूप से है, तो फिर उसको जाल में, वो तो भक्ति के सागर के अंदर इतना गहरे पानी में होता है कि शिकारी का जाल वहां डाल ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान के भक्तों को मकर से तुलना दी गई है, जो बड़े जहाज के बड़े पानी के गहराई में रहते हैं, समुद्र के, वो किनारे और नदियों के अंदर नहीं रहते हैं। तो इसलिए सावधान होकर अति स्नेह नहीं करना चाहिए संसार में, नहीं तो दुख का कारण है। ये 8वीं शिक्षा कपोत और कपोती से, कबूतर और कबूतरी से ली गई। अब हम 8वें अध्याय को शुरू करते हैं, जिसका नाम पिंगला की कथा कहा है एक वैश्या की, लेकिन वो अंतिम शिक्षा है। 9 और गुरुओं से शिक्षा इस अध्याय में वर्णन की गई है। तो पहले 4 श्लोकों में जो अजगर से शिक्षा ली गई है, एक बुद्धिमान और एक साधु पुरुष को अजगर की वृत्ति से, अजगर की वृत्ति से अपने जीवन का यापन करना चाहिए, अजगर वृत्ति से जीना चाहिए। तो अजगर वृत्ति के जीने का मतलब ऐसे नहीं है कि पड़ा रहना चाहिए, इसका मतलब है कि अपना अधिक समय, जैसे लास्ट श्लोक अभी हमने पढ़ा कि मानव जन्म दुर्लभ मिला है, तो इसमें मुक्ति के खुले हुए द्वार की तरफ आगे बढ़ने के लिए अधिक समय जो है वो आत्मा के उद्धार के लिए भगवत चिंतन के कामों में लगाना चाहिए, और जीवन निर्वाह के लिए कितना भोजन चाहिए, कहाँ से मिलेगा, इसकी चिंता ज्यादा अजगर करता नहीं है। तो साधु पुरुष को, बुद्धिमान पुरुष को, ऐसे इंद्रियों के सुख के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु आत्मा के अनुभूति और भगवत प्रेम के प्राप्ति के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए, सदैव होशियार रहना चाहिए। तो आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। श्री ब्राह्मण वाच सुखम ऐन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक एव वा एव च देहीनां यद्दथा दुःखं तस्मान्निच्छेतत् बुद्धः। तो इस श्लोक में अंतिम शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, बुद्धः, तद्बुद्ध, जिस प्रकार बुद्ध, बुद्ध कहते हैं बुद्धिमान को, जैसे हमारे पास बुद्धा भगवान बुद्ध है, बुद्ध का मतलब एनलाइटेंड, एनलाइटेंड का मतलब जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया है, अंधकार मिट गया है, उसको कहते हैं बुद्धा। तो बुद्धिमान जो है न इच्छेत, इस बात की ज्यादा इच्छा न करे, इसलिए इस बात की ज्यादा इच्छा न करे, तस्मान, तस्मान का मतलब इसलिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति है जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया है, अज्ञानता का अंधकार मिट गया है, उसको इसलिए ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। कैसी? ऐन्द्रियक सुखम, हे राजन। देखो महाराज को संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि राजा को तो सब सुख होते हैं, तो कहते हैं हे राजन, हे महाराज, यदु बुद्धिमान व्यक्ति को इंद्रियों के सुख के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तो कहते हैं देही नाम यद्दथा दुखम। देही नाम का मतलब है शरीरधारी को, जब हम शरीर धारण करते हैं ना, तो शरीर जो भी हम धारण करते हैं अपने कर्मों के कारण करते हैं, और कर्मों के कारण जो शरीर धारण करते हैं उस शरीर के साथ हमारा सुख दुख भोजन परिवार सब उसके साथ हमारे साथ आता है। वो शरीर एक बार धारण किया तो उसके साथ हमारे जीवन में क्या सुख आएगा, क्या दुख आएगा, कौन मित्र मिलेंगे, कौन शत्रु मिलेंगे, कितना धन मिलेगा, कहाँ लाभ होगा, कहाँ हानि होगी, ये तो हमारे प्रारब्ध से हमारे साथ आता है। जैसे एक उदाहरण दें, कोई व्यक्ति जेल में चला जाता है तो वो शरीर से जेल में जाता है, तो जेल के अंदर भी उसके साथ उसके भोजन की व्यवस्था जो उसके शरीर में लिखा है, उसको भोजन वहां मिलेगा, रहने की जगह वहां मिलेगी, सोने की जगह वहां मिलेगी। तो इस दुनिया वाले की रूपी बड़े से जेल के अंदर हम अगर आ गए हैं तो हमारे शरीर के साथ जो सुख दुख है वो हमारे साथ आए। ऐसे प्रहलाद महाराज कहते हैं अति प्रयास न कुर्यात, वह सुबह से शाम तक गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं है, जो समय आपके पास है वो सार्थक करके आत्म कल्याण के लिए भगवत भक्ति के कार्यों में लग जाओ, संसार का दुख सुख जो है वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्मों का आया हुआ है। इसलिए उदाहरण क्या देते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है, यथा दुखम देही नाम, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता है, लेकिन दुख सबके ऊपर समय के साथ आता है, न चाहते हुए भी दुख आता है, क्योंकि कर्मों का हमारे साथ पैकेज में है और हमारे को मिलेगा। तो ऐसे सुख भी जो हमारे जीवन में हमारे अपनी कमाई किया हुआ है वो हमारे पास अपने आप बिन बुलाए आएगा, ऐसा नहीं है कि हम प्रयास करेंगे तभी आएगा, उसको आना है आएगा। और फिर एक उदाहरण देते हैं, ये जिसको हम इंद्रियों का सुख कहते हैं, जो सुख इंद्रियों से मिलता है वो स्वर्ग में जो सुख होता है, वैसे नरक में भी जो रहते हैं इंद्रियों से उनको जो सुख मिलता है उसमें भी कोई अंतर नहीं है। अब नरक का यह अर्थ है कि भौतिक जगत में एक सुअर है, सुअरी है, और एक बहुत बड़ा सेठ है और सेठानी है, समझ लो। तो जो सुख सेठ सेठानी को बहुत बड़े बंगले में और कार में रहकर और बहुत ज्यादा अच्छा भोजन खाकर खाने का सुख और सोने का सुख मिलता है, वो सुअर और सुअरी को गट्टर के अंदर गंध के अंदर साथ बच्चों के साथ रहने में वो भी समझती है कि मुझे सुख मिल रहा है, और इतने सारे मोटे हैं आखिर उनको भी तो कहीं से भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं ना। तो दोनों को जो सुख मिलता है और दोनों को जो दुख मिलता है, उस इंद्रियों के सुख और दुख में कोई अंतर नहीं है। हमारी दृष्टि से अंतर है, लेकिन सुख और दुख दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो भी अपने आप में सुख समझता है कि मैं सुख भोग रहा हूं, और दूसरा है वो भी समझता है मैं सुख। तो स्वर्ग में जो जाते हैं उनको भी सुख मिलता है, कौन सा सुख? इंद्रियों का सुख। जो नरक में जाते हैं उनको दुख मिलता है हमारी दृष्टि से, लेकिन वहां भी उनको भोजन अपनी जगह पे मिलेगा, कहीं ना कहीं रहने की जगह मिलेगी, जैसे भी हो। वो हमारे कांसने की बात आती है कि स्वर्ग वालों को स्वर्ग को थोड़ा बढ़ाना था तो जमीन नरक के पास बहुत पड़ी थी, तो जमीन के ऊपर विवाद हो गया, तो नरक वाले हंसने लगे जोर जोर से। बोला तुम क्या करोगे, तुम्हारा केस लड़ने के लिए वकील कहाँ से मिलेगा, सारे वकील तो हमारे नरक में रहते हैं, तो तुम्हारा केस लड़ने के लिए भी आदमी नहीं मिलेगा तुमको। तो वहाँ भी बड़े बड़े विद्वान जो यहाँ बुद्धिमान दुनिया के अंदर जो दूसरों को चक्कर में डालते हैं, वो नरक में जाते हैं, यहाँ समझते हैं सुख भोग रहे, तो वहाँ भी उनके अपनी दृष्टि का सुख उधर भी उनको मिल जाएगा। तो कहने का है कि इंद्रियों का सुख दोनों जगह एक जैसा है, तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को, अब जब बुद्धा शब्द आया है तो भगवत गीता का एक श्लोक ऐसे सुमृति में आ रहा है जिसके अंदर लिखा है, इंद्रियों के सुख का वर्णन लिखा है, ये संस प्रसजा भोगा दुख योनि एवते आद्य अंत वंत तो कौनते नतेषु रमते बुद्धा। वहां शब्द भी बुद्धा है, वहां लिखा है इंद्रियों का सुख विषयों से जो मिलता है वो क्षण भंगर है, आने जाने वाला है, अंतवंत कौनतेय, उसका अंत होने ही वाला है, वो सदा रहने वाला नहीं है। ये संस प्रसजा भोगा, जो भोग जो सुख इंद्रियों से विषयों में विचरण करने से मिलता है, वो सुख आदि अंतवंत वो आने जाने वाला है। न तेषु रमते बुद्धा, वो एक और चीज लिखी है, वो ध्यान से लाइन एक और बीच में, ये संस प्रसजा भोगा दुख योनि एवते, इंद्रियों के विषयों का सुख दुख का जन्म स्थान है। कोई कहे कि दुख कहां से उत्पन्न होगा, तो कहते इंद्रियों के भोग के परिणाम से दुख का जन्म होता है, दुख की जन्म भूमि, दुख का गर्भ भोग और सुख है। तो दुख का जन्म ही सुख, इंद्रियों का सुख है, इसलिए आने जाने वाले सुख का न देशु रमते बुद्धा, जो बुद्धिमान है वो ऐसे क्षणिक तुच्छ सुख में रमण नहीं करते। तो इस दुख क्या करना चाहिए, इस दुख को, तो इसके बाद वाला श्लोक है, शक्नोति यशोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नरः। जिसमें इतना सामर्थ है, कर सकता है, क्या सहन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, किसको? रजोगुण के प्रभाव से जो काम और क्रोध का वेग आता है, तूफान उठता है कामनाओं का, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं पूरी होती है तो क्रोध आता है, उस वेग को सह सकता है अगर कोई। कब तक सहे? बोला जब तक जिए तब तक सहे, ये वेग आता रहेगा। बोला नहीं सह पाए, बोला यो संयुक्त, जो भगवान का हाथ पकड़ लो, उनके ऊपर इन वेगों का प्रभाव नहीं पड़ता है, और उसका हाथ पकड़ लो तो फिर आप सुखी हो जाओगे, आपको वेग बहा के ले नहीं जाएगा, आपको सहने का सामर्थ्य आ जाएगा। तो पहली शिक्षा अजगर से, वैरथ समय इंद्रियों के भोग, यहां तक के स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म करेंगे तो वो पुण्य भी अंत तो गत्वा एक शरीर दिलाएगा, और जैसे पुण्य का फल पूरा हो गया, कर्मों के पुण्य का फल पूरा होता है, और जैसे पुण्य क्षीण हो गए, मृत्यु लोकम विशंति, वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो आप तीन पुण्यों का आज वर्णन सुन लीजिए। एक होता है सकाम कर्म से, कर्म कांड से उत्पन्न होने वाला पुण्य, उसको कहते हैं कर्म उन्मुखी पुण्य या सुकृति। वो हमारे को ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक ले जाएगी, अथवा इस संसार के अंदर उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा, नामाचार ये देगी। दूसरा होता है कर्म उन्मुख ज्ञान उन्मुख सुकृति। वेदों का, उपनिषदों के ज्ञान का अध्ययन किया, ज्ञानियों का संग किया, उससे जो सुकृति मिलेगी, उससे ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म में लीन होने का जो है मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तीसरी योग उन्मुख सुकृति, योग का अभ्यास करेंगे, आसन प्राणायाम करने वालों का संग करेंगे, ध्यान धारणा करेंगे तो सिद्धियां मिलेंगी, और बड़ी अद्भुत सिद्धियां मिलेंगी, चमत्कारी कार्य हो सकते हैं। और चौथी सुकृति है भक्ति जनक अज्ञात सुकृति। ये जो सुकृति है ये भक्ति के कार्यों की है, कहीं भगवान के कीर्तन करने वालों को पानी पिला दिया, कहीं भगवान के कीर्तन करने वालों का सराह दिया, कभी कोई साधु की, भगवान की, भगवान के भक्त की सेवा हो गई, तो ये सुकृति जो है इसको कहते हैं भक्ति उन्मुख सुकृति। ये सुकृति कई जन्मों से जब कठी होती है तब कोई भगवान की उत्तम प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए साधन का अधिकारी बनता है। और ये सुकृति, वो तीनों सुकृति इस रास्ते पे नहीं, उस अधिकारी नहीं बना सकती। एक पुण्य का फल स्वर्ग भोगा सकती है, एक ज्ञान का फल ब्रह्म तक ले जा सकती है, एक योग का फल सिद्धियां दे सकती है, लेकिन तीनों के अंदर भोग की इच्छा है। ब्रह्मलीन के लिए भी श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे संसार के अंदर कोई व्यक्ति मानो के इस एक शहर के अंदर बड़ा आदमी है, तो शहर से वो अपने अपने पूरे जिले में बड़ा आदमी बनना चाहता है, फिर अपने प्रांत में बड़ा बनना चाहता है, अपने फिर पूरे राज्य में बड़ा बनना चाहता है, ऐसे पूरी दुनिया में बड़ा होना चाहता है, ऐसे फिर दुनिया से मानवों से ऊपर उठ के भगवान के समान बड़ा होना चाहता है। तो ये भी बड़े होने की एक दूसरे से कॉम्पिटिशन है, तो मैं भी बड़ा हो जाऊं, और भाई इतना बड़ा सबसे भगवान है तो चलो मैं भगवान में लीन हो जाऊं, उसके बराबर हो जाऊं। तो ये जो धारणा है ये भी भौतिक धारणा में आती है। तो इसलिए जो अजगर क्या करता है उससे क्या सीखना चाहिए कि हमारा समय जो है मानव जन्म का दुर्लभ, उसका मुख्य उद्देश्य आत्मा के साक्षात्कार और भगवत भक्ति के कार्यों में लगाना चाहिए। उस समय को केवल भौतिक भोग के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है। इस शरीर के साथ जो हमारा सुख दुख है वो प्रारब्ध का हमारे साथ आया हुआ है, वो हमारे साथ है और हमको समय आने के ऊपर मिल जाएगा। और ये है काय के लिए, ये हमारा अपना कमाई की हुई है, प्रारब्ध है जो हमको मिलेगा। और इससे अजगर से, अजगर शब्द का अर्थ क्या है वो अगले श्लोक में इसका और अर्थ समझ में आया। अज कहते हैं बकरे को और गिर कहते हैं गले को, जिसके गले के अंदर पूरे का पूरा बकरा चला जाए, इतना बड़ा जिसका गला हो, जिसका मतलब वो अजगर कोई चबा के नहीं खाता है, वो जब खाता है तो पूरे के पूरे बकरा हो या हाथी हो या ऊंट हो, वो जो मेरा इतना बड़ा वो भारी होता है कि वो निगल के सबको पूरे का पूरा निगल के जाता है, पेट के अंदर ही उसके उसका जो है वो पाचन हो जाता है। तो अजगर, जिसका गले के अंदर पूरे का पूरा बकरा चला जाए उसको कहते हैं अजगर। तो अजगर ऐसे एक जगह बैठा होता है, अपने निर्वाह के लिए इधर उधर भागा दौड़ी नहीं करता है। तो इस श्लोक में ये विशेष कहा गया है। तो हमारे जीवन का ज्यादा समय हमारे को भगवत प्रेम को प्रकट करने में लगाना चाहिए। भगवत प्रेम कहाँ है? भगवत प्रेम हमारे हृदय में पहले से भरा हुआ है, उसको कैसे जगाया जाए? जैसे वो प्रेम जग जाएगा हृदय के अंदर, आनंद का पूरा सरोवर है, आनंद का पूरा सरोवर है, उसके अंदर से फुहारे निकलेंगे और उस आनंद का अनुभूति हो जाए, तो फिर ये स्वर्ग आदि के सुख की इच्छा ही नहीं होगी। लेकिन उस प्रेम के अंदर पड़े हुए खजाने को खोलने के लिए, उसको जगाने के लिए साधन की जरूरत है, तो उस साधन में समय लगाना चाहिए। किस साधन में? भक्ति के साधनों में समय लगाना चाहिए। ऐसे समय लगाने से हमारे को असली सुख की अनुभूति होगी, इंद्रियों के सुख से कुछ नहीं। तो और अजगर क्या करता है, तो हम दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम स्तोकम एव वा यदरिच्यैव अपतितहम ग्रसेद अजगरो अक्रियः। अगला श्लोक भी अजगर से, और इस श्लोक को वो इंद्रियों के सुख में सब सुख मानना चाहिए। तो यहां अजगरो अजगर के समान, अक्रिय है, कोई क्रिया नहीं करता है, कोई चेष्टा नहीं करता है। किसके लिए? कुछ खाने के लिए। लेकिन कहां से कैसा खाना आता है आजकल? ग्रासम सुसुमिष्टम, कभी कभी तो बहुत मीठा, बहुत रसीला और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलता है, और कभी विरसम, बिना रस वाला, सूखा, बासी। जैसे अजगर के लिए कहो तो कभी उसको पूरे का पूरा बकरा मिलता है, कभी चूहा मिलता है। कभी तो उसके कहने का तात्पर्य है कि कभी बहुत रसीला मिलता है और कभी बिना रस के मिलता है। महानतम, और कभी तो पेट भर मिल जाता है, और कभी स्तोकम एववा, और कभी मुट्ठी भर मिलता है। कब मुट्ठी भर चने चबाने को मिलते हैं, और कभी कहीं बहुत बड़ा भोज चल रहा है तो रसमलाई, रसगुल्ले से लेकर हलवा पूरी और पनीर का सब्जी और क्या पकोड़ा सब मिल जाता है। तो कभी तो रसीला मिलता है, कभी बेरस मिलता है, कभी मीठा मिलता है, कभी सूखा मिलता है, कभी कड़वा मिलता है, कभी मीठा मिलता है, कभी पूरा पेट भरा मिलता है, कभी तो बहुत थोड़ा सा अल्प मिल जाता है। यदृच्छया, जो भाग से आ जाए, जो मेरे कर्मों के भाग से। आपतितम का मतलब है आगे आके गिरे। कैसे गिरेगा? अरे भाई, तेरे भाग का भोजन ग्रास तेरा जो है वो पहले से तेरे कर्मों से लिखा हुआ है, तेरे को मिलेगा निश्चित रूप से। एक भक्त था, भक्त क्या था, विश्वास कम था। उसने ऐसा कोई श्लोक पढ़ा होगा जिसमें लिखा था कि भगवान सबको भोजन देते हैं, जिसको पेट दिया है उसके भरने की व्यवस्था भगवान ने पहले से करके रखी है। तो उसके, और भगवान हर एक को मुख में टाइम के ऊपर दाना पहुंचा देता है जब जरूरत उसको होती है। तो उसने कहा कि भगवान जबरदस्ती खिला देगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे को मिल जाएगा क्या? बोला, शास्त्र में लिखा है सबके सामने समय आने के ऊपर, जब उसका कर्मों के फल देने वाला भगवान उसके कर्मों के अनुसार उसको भोजन उस समय जरूर पहुंचाता है। इसने कहा, मैं जाके पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठता हूँ, देखता हूँ भगवान मुझे कैसे जबरदस्ती खिलाते हैं। बोला, मुंह में डाल के खिला देगा जबरदस्ती, ऐसे भी तुम्हारे कर्मों का होगा तो कोई नहीं रोक सकता। ये पेड़ के ऊपर बैठा जाके सुबह का, दोपहर हुई, कुछ लोग यात्री वहां से गुजर रहे थे, उस पेड़ को घना देख के छाया वाला नीचे बैठ के अपना टिफिन खोला और भोजन की सामग्री खोल के बैठे, तब तक घोड़ों की टाप सुनाई दी। अरे, कहीं से कोई डाकू आ रहे हैं बेचारे, ये तो भोजन खुला हुआ चाड़ के वहीं छोड़ के भागे, ये तो अपनी जान बचाकर भाग गए, भोजन जो नीचे खुला पड़ा था डाकू ने देखा, ये भोजन इतना स्वादिष्ट यहाँ लगा हुआ है, ऐसे तो नहीं है किसी ने हमको मारने के लिए विष डाल के इस भोजन में रखा हो, और उनको मालूम है कि हम इस जंगल में रहते हैं और हमको वो मारने के लिए ऐसा करके गए हो, तो देखो यहाँ कोई व्यक्ति जरूर होगा जिसने ये भोजन रखा होगा और देखता होगा, चारों ओर से ढूंढते हैं तो पेड़ के ऊपर इसको देख लिया। अरे नीचे उतरो। बोले, नहीं उतरूंगा। नीचे उतरो, जबरदस्ती उतारा। अब कहते हैं पहले इसी को खिला के देखते हैं, अगर इसने विष डाला होगा तो ये खाएगा नहीं, आना कानी करेगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये हमें मारने के लिए कर रहा है। अरे तुम खाओ, बोला नहीं खाऊंगा। इसने तो पहले से वो सुना था कि भगवान जबरदस्ती खिलाता है, तो कहते देखे देखूँ कैसे खिलाता है। अब तो डाकुओं ने हाथ पकड़ के कहा कि इसके मुंह में जबरदस्ती भोजन डालो। अब उसके मुंह में जब भोजन डाला तो उसने खाया, खाया तो मरा नहीं, नहीं मरा तो फिर पूछा उससे, सुनो भाई तुम क्या कह रहे थे? बोला आप जो कह रहे थे जब खिलाना होता है ना तो डाकुओं से जबरदस्ती भी मुख में भोजन डलवा देता है, उसको खिलाने वाले को खिलाना होता है ना तब कहीं से भी खिलाता है। तो अजगर यहाँ कह रहा है कि वो एक जगह बैठा है, यहाँ ज्यादा सफर नहीं करता है, इधर से उधर नहीं जाता है, भागा दौड़ी नहीं करते, देश विदेश नहीं घूमता है, वो अपनी जगह पे बैठा होता है, कैसे भी उसके लिए सामने उसके कोई ना कोई पशु उसके रेंज में आ ही जाएगा और उसको वो खा के अपना निर्वाह कर लेगा। कभी बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाएगा, कभी अच्छा नहीं मिलेगा। तो साधु जो बेचारे भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं, प्रचार में जाते रहते हैं, तो कभी कभी तो उसको बहुत ज्यादा घना मिल जाता है और कभी कभी तो दो चार चने मिल जाते हैं, तो कभी चने चबा के भी काम चला लेता है और कभी बहुत अच्छा भोज मिल जाता है, पेट भर पे या मुट्ठी भर के जिसमें भी काम चले उसमें चला लेता है। वो अजगर की तरह जितना आता है उसी को पेट में डाल देता है, उसी के लिए ज्यादा चिंता नहीं करता है कि मुझे इतना मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए, ऐसे विचार वो नहीं करता है। तो ये इसके लिए एक भोजन के लिए नहीं, इसके लिए जो हमारे पास उपदेश अमृत में एक श्लोक है, वाचो वेगम उदर उपस्थ वेगम, भाई उधर का वेग का मतलब पेट के लिए जो खाने को चाहिए, जबान को जो चखने को चाहिए, या अधिक कठा नहीं करना चाहिए, अधिक खाना नहीं चाहिए, अपना क्रोध के वेग को रोकना चाहिए, ये जो छह वेग हैं इनको जो रोक सकता है, ये अजगर की वृत्ति में इन सब वेगों को रोकने की बात की जा रही है। ये ऐसे महात्मा साधु जो दूसरों को शिक्षा देने का अधिकार रखते हैं, गुरु शिष्येत गुरु, पूरे विश्व में जो शिष्य बना सकते हैं, उनके अंदर ये छह वाचो वेगम बोलने का, उदर वेगम और पेट का मतलब खाना भी है और जीवन की आवश्यकता का धन आदि भी है, जितना जरूरत है उतना ही इकट्ठा करे। ज्यादा समय, बोला ज्यादा समय कहाँ लगाए? बोला कामनाओं की पूरा करने में नहीं लगाए, लेकिन जो अनंग भगवान कामदेव को भी आकर्षण करने वाले हैं, भगवान का एक नाम है अनंग, हाँ एक अनंग गायत्री है, वो कामदेव की गायत्री उसको कहते हैं, जो ब्राह्मण दीक्षित है काम गायत्री का पाठ करते हैं तो उसमें अनंग शब्द आता है, जिसका अंग नहीं है, ये कामदेव को भी आकर्षण करने वाले श्री कृष्ण का, मदन मोहन का असल में ध्यान है। लेकिन इसका अनंग का मतलब क्या है? अनंग का मतलब है जो इंद्रियों के, ये अंग है ना, आंख नाक कान ये सब अंग है, हाथ पांव ये अंग है, इनके भोग की इंद्रियों की इच्छा को जो छोड़ दे और केवल भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को बढ़ाए तो वो अनंग को पाने का अधिकारी हो सकता है। तो ऐसे अजगर की वृत्ति से साधु को जो भाग्य से मिल जाए, इसको कभी कभी साधु के लिए बोलते हैं कि ये हवाई वृत्ति, जैसे आ गया तो आ गया, यदर इच्छा लाभ संतुष्टो, ये भगवद गीता का श्लोक है, यदर इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वा अतीतो विमत्सर, जो कुछ भाग्य से मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे और द्वंद्वों से परे रहे, मेरा तेरा खारा मीठा गर्म सर्द और ऐसे दुख सुख इन द्वंद्वों से मुक्त रहे, यदर इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वा अतीतो विमत्सर, विमत्सर मत्सर कहते हैं जो दूसरे से ईर्ष्या करने वाला, दूसरे को सुखी देखकर जलने वाला, दूसरे से हसद करने वाला, ईर्ष्यालु विमत्सर है, उसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, बहुत ही निर्मल स्वभाव का है, उसके अंदर किसी के लिए द्वेष नहीं है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर सम दुख सुख धीर, ऐसे ये अद्भुत श्लोक है भगवद गीता का कि जो भाग्य से मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसी वृत्ति इस श्लोक को देखकर और अगले श्लोक को देखकर ऐसी वृत्ति का वर्णन जो सुनते हैं तो श्रीवास पंडित का श्रवण हो रहा है। श्रीवास पंडित भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पांच तत्वों में नारद मुनि के अवतार के रूप में भक्ति का अवतार, और जिनके आंगन में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने नित्य पार्षदों के साथ पूरी रात हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करते थे। एक साल तक ऐसे अद्भुत संकीर्तन किया। ये जो श्लोक हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं ये श्लोक तो उनके वृत्ति के ऊपर, वो इस वृत्ति से जीते थे, इस वृत्ति का मतलब इस व्यवहार से जीते थे। तो तीसरा श्लोक आइए पढ़ते हैं। शय्यता अहनी भूरिणी निराहारो अनुक्रमः यदि नोपन्येद ग्रासो महाअहेरेव दिष्ट भुक। महाअहिर कहते हैं अजगर को, अहिर कहते हैं सांप को वैसे, तो इसको सांप नहीं समझना चाहिए, हमारे को शिक्षा देने वाला समझना चाहिए। महासांप, बड़ा सांप मतलब अजगर, और दिष्ट भुक का मतलब है जो हमारे भाग्य का भगवान कर्मों का देते हैं उसके ऊपर निर्भर हो। दिष्ट भुक जो शब्द है उसका अर्थ है जो जो भगवान इस भगवत इच्छा से हमारे कर्मों का फल जो भगवान ने निर्दिष्ट किया है, जो हमारे हिस्से का है वो हमारे पास आएगा, ऐसे अजगर मानता है। तो आगे क्या लिखा है, शैत, शैत का मतलब है संतुष्ट रहे, शांत रहे, भागा दौड़ी न करे, भूखा हूं मर जाऊंगा ऐसा न करे, शांत रहे, संतुष्ट रहे। अहनी भूराणी, अहनी कहते हैं दिन को, अहर कहते हैं दिन को, निशा कहते हैं रात को, अहर निश कहते हैं, अहर निश मतलब दिन और रात। अहनी भूरिणी, भूरिणी का मतलब बहुत से दिन, अगर मानूं कि बहुत से दिन निराहारो, आहार नहीं मिला, खाने के लिए कुछ नहीं मिला, बहुत दिनों से कुछ दिनों के लिए खाने को नहीं मिला तो भी संतुष्ट रहा, शांत रहा, अनुपक्रम, कोई विशेष उपकार उपकरण करने का मतलब कोई चेष्टा उसको प्राप्त करने के लिए भागा दौड़ी नहीं की। जैसे आदमी कोई कहे कि भाई मेरे को कुछ नहीं मिला है तो मैं चला जाऊंगा रेलवे स्टेशन पे, किसी का भार उठा लूंगा कूली की तरह, बैग तो भी 2 रुपये मिल जाएंगे, भाई कोई मजदूरी कर लूं तो कुछ मिल जाएगा, ऐसे कुछ अपने भजन को छोड़कर। असल में ये स्तर बहुत ऊपर का है, जो भगवान के प्रेम और भजन में इतना रस और आनंद लेते हैं, जैसे जैसे पृथु महाराज कहते हैं कि भगवान आपकी कथाओं को सुनने के लिए करोड़ कान दे दो, कोटि कर्ण दे दो, ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि आपका नाम इतना मीठा है कि एक जीभा से क्या लूं, कोटि जीभा और कोटि कर्ण हो जिससे आपका नाम गाऊं और सुनूं। जिनको ऐसा रस आ जाता है उनको कब भोजन करना है ये याद भी नहीं आता। हमारे 6 गोस्वामी वो कहीं एक बार दिन में थोड़ा सा मुट्ठी भर जो चने पड़े हैं कि सूखी रोटी पड़ी है उसको खा लिया तो खा लिया, रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह एक दोना छाछ का पी लिया और उसका काम चल गया, कुछ और ज्यादा कहीं से मांग पकाना नहीं, कुछ साधु के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये उन संतों के स्तर की बात है, भूखा रहा अगर नहीं मिला तो निराहार रह गया। यदि नो पन्येद ग्रासो, अगर उसी को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो कोई चिंता नहीं है, उपवास कर लेगा, कहेगा भगवान ने हो सकता है मेरे भले के लिए कुछ दिन उपवास का प्रबंध किया है, और इसके लिए तो अगर नहीं मिला है तो हमारे कर्मों के कारण नहीं मिला है, तो कहीं से कहीं हमारे से कोई अपराध हो गया होगा, नहीं मिला होगा, तो इससे हमारा हित है, कोई बात नहीं। भगवान तो दयालु है, वो तो हमेशा सबको देता है, हमारा बन तो नहीं करेगा। हमारे अपराध के कारण नहीं भी आया है, हमारे कर्मों के कारण नहीं आया, कोई बात नहीं, आज उपवास कर लेंगे। ये श्रीवास पंडित से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था, पंडित गृहस्थी हो, परिवार है, कुछ काम नहीं करते हो, हाँ अनुपकर्म कोई भी प्रयास नहीं करते हो कमाने का, घर चलाने का, कैसे चलेगा परिवार तुम्हारा? बोला भगवान भेज देगा, शरीर दिया है, वो कहते चूंच दिया है तो दाना भी चुगने को देगा। कहते अजगर करे न नौकरी, पंक्षी करे न काम, कहे दास मलू का सबको देत राम। ये मलुक एक भक्त हुए हैं, जिसका मलुक पीठ बहुत बड़ा प्रसिद्ध, वृंदावन में एक पीठ है मलुक पीठ। वो दास मलुक कहते हैं कि अजगर कहीं नौकरी नहीं करता है, और ये आकाश में उड़ने वाले पक्षी कोई काम नहीं करते हैं, सबका दाता राम है, सबको राम उनके सामने भी। एक हाथी को एक मन रोज का दे रहा है, और एक चुंटी को एक दाना, एक कण रोज का दे रहा है। ऐसे लक्ष्मी को, लक्ष्मी ने नारायण से कहा कि मैंने सुना है आप सबकी रोजी का प्रबंध करते हो, ये एक चुंटी मैं डब्बी में लाई हूँ, आप आंखों से देख लो, मैं इसको बंद कर देती हूँ डब्बी में, आप इसके भोजन का प्रबंध कैसे करता है करते हैं मैं देखता हूँ। भगवान केवल मुस्कराए, चुंटी डब्बी में बंद हो गई। दो दिन के बाद माँ लक्ष्मी खोल के देखती है, एक चावल का दाना है, उसको चुंटी खा रही है। भगवान नारायण मुस्कुरा कर कहते हैं तुमने जब डब्बी मेरे सामने लाई, मेरे मस्तक के लगा, मेरे ललाट के ऊपर लगा हुआ जो ताना था चावल का, इसका भोजन था और गिरा, और इसको ये मिला है, दो दिन से खा रहा है। ऐसे कहते हैं कि शेर के खुले हुए मुंह के दांतों के बीच में जो मांस अटक जाता है, उसके लिए शेर मुंह खोल के रख बैठता है, और एक छोटा सा जीत आता है शेर के मुख के अंदर दांतों के बीच में, अपने भोजन को निकालता है। और दीवारों के अंदर अब कभी कभी हम खुदाई करते हैं तो कितने जीव मिलते हैं, तो उसके लिए भी भगवान ने भोजन का प्रबंध करके रखा है। शिवाजी महाराज जब बड़े बड़े किले बना रहे थे महाराष्ट्र में, तो एक दिन उनका गुरु समर्थ रामदास आया, तो उन्होंने कहा, शिवाजी महाराज कहने लगे देखो कितने लोगों का रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रहा हूँ, ये किले बन रहे हैं, सबका भोजन का प्रबंध, सबको खाना मिल रहा है। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा ये पत्थर जिसके पास हम खड़े हैं ना, इसको कटवाओ। तो शिवाजी मजदूरों को बुलाया, पत्थर काटा तो अंदर से एक जीव निकला, और उस जीव के सामने उसका भोजन पड़ा। अब पत्थर के अंदर जीव पैदा किया, उसका भी रिजक आगे कर धरिया, उसका भोजन उसके आगे पड़ा है। और उसके बाद शिवाजी की ओर देखकर कहा कि इसके भोजन का प्रबंध कौन करता है शिवाजी? ये भगवान जो पत्थर के अंदर जीव है उसके भोजन का प्रबंध कर रहा है, तो तुम क्या इन सबको भोजन देते हो? इनके अपने भाग का भोजन इस सेवा के द्वारा तुम्हारे माध्यम से मिलना है, इसलिए मिल रहा है। ये तो एक साधु के साथ नया नया ब्रह्मचारी पहली बार भिक्षा लेने गया, और भिक्षा के लिए साधु जाके ग्रस्त के घर के दरवाजे के बाहर कहते हैं भिक्षा आम दे इमा, माता भिक्षा दो। तो अंदर से एक नवयुवक लड़की कुछ भोजन लाके बाबा के बर्तन में डाला, तो उस ब्रह्मचारी ने कभी लड़की देखा नहीं था, तो लड़की का वक्षस्थल छाती को देखा, तो वापस आते हुए पूछा गुरुजी ये कौन दे रहा था, इसको कुछ बीमारी हो गई है, छाती इसकी बाहर निकली हुई थी। गुरुजी ने कहा बेटा देखो ये इसके स्तन है, ये आगे माँ बनेगी तो इसके अंदर दूध का भगवान प्रबंध बच्चे के जन्म लेने से पहले कर देते हैं। तो शिष्य कहता है गुरुजी जब भगवान बच्चे के जन्म से पहले उसके भोजन का प्रबंध माँ के स्तनों में दूध के रूप में करता है, तो क्या हमारा भोजन का प्रबंध भगवान नहीं करेगा कि हम भटक भटक के दर दर के ऊपर जाके कहते हैं कि हमारे को रोटी दे दो, हमारे को भोजन दे दो? भिक्षा क्या मांग के करेंगे। इसलिए सबसे उत्तम कोटि के साधु होते हैं उसको कहते हैं अयाचक, कहीं से मांगते नहीं, जो भाग से आ गया उसको भोग लगा लेते हैं कि भगवान ने प्रसाद भेजा है इसको ले लो। ऐसे माधवेंद्रपुरी का हम सब कथा जानते हैं कि 3 दिन से कुछ नहीं खाया, 3 दिन से नहीं कुछ खाया तो भगवान को चिंता हो गई और दूध का लोटा स्वयं लेकर आ गए और कहा कि मैया ने गैया का दूध, बाबा आप 3 दिन से भूखे बैठे हैं, आपके लिए भेजा है। तो श्रीवास ठाकुर से जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं भोजन मिला तो बोला उपवास रख लूंगा। बोला उपवास रख लोगे? बोला दूसरे दिन नहीं मिला तो? बोला और उपवास रख लूंगा एक दिन, इसमें क्या, एकादशी का एक दिन रखते हैं तो 2 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। पहले पहले हमारे माता जी और तुलसी के दिनों में 3-3 दिन उपवास रखती थी, गऊ का उपवास, तुलसी का 3-3 दिन कुछ नहीं खाती थी, केवल पानी पीती थी, ये हमने तो बहुत से ऐसे देखा है। तो महाप्रभु ने कहा तीसरे दिन नहीं मिला तो फिर गंगा का जल पी लूंगा और निर्वाह हो जाएगा। महाप्रभु को आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा भगवान के ऊपर विश्वास है, इससे ज्यादा अजगर वृत्ति से और कौन जिएगा। तब महाप्रभु ने ये कहा कि सुन लो, श्रीवास लक्ष्मी कभी गरीब हो जाए और किसी के दरवाजे पे मांगने जाए तो ये हो सकता है, जो नामुमकिन है, असंभव है, लेकिन ये भी हो सकता है कभी। लेकिन तुम जैसे विश्वास वाले बुद्धिमान भक्त के पास कभी किसी चीज का अभाव नहीं होगा। और यहाँ प्रभुपाद जी के शिष्य ने इसके तात्पर्य में भी अंतिम लाइन में यही लिखा है, भगवान के भक्तों को एक श्लोक यहाँ इसमें दिया है कि नहीं मिलता है तो उसको क्या समझते हैं, तत्ते अनुकंपम सो समीक्षमाणो भुंजन्ते एवात्मकृतम अपक्कम। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण को बछड़े और ग्वाल बाल चुराने के बाद है कि हमारे कर्मों के कारण हमको कोई संकट आया है तो भगवान इसको हम भोग लेते हैं, लेकिन तुम्हारी कृपा आज नहीं तो कल जरूर होगी, तुम्हारी कृपा में कभी कमी नहीं है, हमारे कर्मों का आया है तो ये मिट जाएगा। और ऐसे 2-3 जगहों पर श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि हमारे भगवान की सेवा में लगे हुए भक्तों के लिए, इसके बाद वाले श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, ये लिखा है, ये श्लोक आज पढ़े के समय हो गया है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, उस प्रश्न को उठा के फिर छोड़ देते हैं कल के लिए। तो ऐसे साधु संत को नहीं मिला और वो उपवास इसलिए रखता है क्योंकि उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, या कुछ काम करने कुछ को उसको काम करना आता नहीं है, इसलिए वो बेचारा ऐसे पड़ा हुआ है। एक प्रश्न उठाया है श्रीधर स्वामी आदियों ने कि वो ऐसे क्यों रहता है, नहीं मिला तो खाएगा नहीं और भगवान का भजन में लगा रहेगा, ऐसे क्यों, क्यों वो उठ नहीं सकता है, शरीर में ताकत नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, मन में शक्ति नहीं है, अथवा काम करने की कोई उसके अंदर टैलेंट नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई करने के लिए शक्ति नहीं है, कुछ काम करने आता नहीं है का। इसके लिए ये श्लोक इसके उत्तर में, नहीं नहीं ओज सहो बल युत्तम, अरे उसके अंदर शरीर और इंद्रियों की में भी बहुत बल है, उसकी मानसिक शक्ति भी बहुत ज्यादा है, मानसिक शक्ति भी है, इंद्रियों और शरीर की शक्ति भी है, और उसके साथ अच्छी तरह से परिपूर्ण है। बिभ्रत देहम अकर्मण, वो अपने जीवन का भरण पोषण, बिभ्रत का मतलब भरण पोषण, भरण पोषण स्त्री को भारिया कहते हैं, ये कपोती में लिखा था भारिया, भारिया का मतलब जिसका भरण पोषण करने का भार पति उठाए उसको भारिया कहते हैं, भार उठाने का मतलब उसका खाना भोजन कपड़ा रहना उसको कहते हैं भरण। तो बिभ्रत का मतलब अपना भरण पोषण, देह का, अपने देह का भरण पोषण, जो भोजन है, अकर्मकम कुछ नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, उसके लिए भोजन के लिए कुछ नहीं करता है, भजन में लगा रहता है, भोजन के लिए कुछ नहीं करता है। श्यानो वीत निद्रश्चा, श्यानो यही शब्द है जो इससे पहले श्लोक में था, श्यात बड़ा शांत है, संतुष्ट है, वीत निद्रा, वीत कहते हैं छोड़ने को, और निद्रा का मतलब आलस भी है, निद्रा का मतलब नींद भी है, और निद्रा का मतलब अज्ञान है। तो उसके अंदर अज्ञान नहीं है, आलस नहीं है, तमोगुण नहीं है, निद्रा ये पड़ा है अजगर की तरह के तमोगुण में नहीं, बड़ा बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, प्रवीण है। तो क्या दत्तात्रेय कोई पागल था ऐसे पड़ा था अवधूत? अरे साक्षात भगवान दत्तात्रेय पूजे जाते हैं, पूरे कई उसके पूजा करने वाले हैं, विष्णु भगवान का अवतार है, अत्रि ऋषि और अनुसुईया के घर में प्रकट हुए हैं। तो ये सोए हुए थे क्या, कुछ कर नहीं सकते थे? नहीं, फिर भी अकर्म कम कुछ नहीं करते थे। वीत निंद्रश्च निंद्रियावान अपि, किस लिए काम नहीं कर रहे थे? इंद्रियों के सुख के लिए काम नहीं कर रहे थे। इंद्रियवान, इंद्रियवान किसको कहते हैं? जो इंद्रियों को, जैसे धनवान है, जिसके पास धन है वो धनवान है, जिसको पापी है वो अघवान है, और जिसके पास भक्त और भगवान का संग है वो भाग्यवान है, और जो इंद्रियों के पीछे लगा हुआ है वो इंद्रियवान है। तो इसके इंद्रियों में सब शक्ति है, फिर भी न ये है तो कुछ भी प्रयास नहीं कर रहा है, कुछ भी प्रयास नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अजगर की तरह बैठा है कि चल नहीं सकता, ऐसा नहीं है। बड़े बकरे को निगल सकता है, इसका मतलब कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन इंद्रियों के लिए, भोग के लिए, इंद्रिय सुख के लिए काम नहीं करता है। तो किसके लिए काम करता है? बोला आत्मा के आनंद के लिए, भगवत प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने साधन में इतना तलीन है कि उसको इस बात का विचार ही नहीं रहता है कि कब भोजन करेंगे, जब भूख मिली, जब मिल गया, जब मिल गया तो खा लेंगे। तो इस श्लोक के तात्पर्य में आखिरी लाइन में लिखा है, आप देखें कि हमारा ये अनुभव है कि भगवान के भक्ति और प्रचार में लगे हुए भक्तों को हर एक चीज अपने आप समय के ऊपर मिल जाती है, उनकी आजीविका के लिए उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जो भक्त लिख रहे हैं वो अपनी अनुभूति से लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी ने अपनी अनुभूति से लिखा है। तो ये चार श्लोक में अजगर से जो अपने हित के काम में लगा रहे लेकिन इंद्रियों के सुख के काम को महत्व ज्यादा न दे, ये इसका सार है। इस श्लोक के ऊपर कल फिर थोड़ी चर्चा करके इसके बाद समुद्र से क्या शिक्षा मिलती है। हाँ, अजगर समुद्र, ये श्लोक भी हमको रोज पाठ करना चाहिए, 24 गुरुओं के नाम तो कम से कम याद हो जाएं। तो अभी तक हमने 8 गुरु वहां और 9वां गुरु आज यहाँ, हमने 9वें गुरु का अजगर से शिक्षा का ऑलमोस्ट पूरा किया है, फिर भी थोड़ी सी चर्चा इसकी कल करेंगे। तो ये गुरुओं के नाम याद कर लेते हैं, पृथ्वी वायु आकाशम आपो अग्निश चंद्रमा रवि कपो तो अजगर सिंधु, कल सिंधु, सिंधु कहते हैं सागर को, कल सागर से क्या शिक्षा मिलती है, आज अजगर की शिक्षा है। उसके बाद है पतंगो मधुकृत गज, उसके बाद पतंग जो आग में जलता है, उसके बाद मधुकृत मधुमक्खी, और उसके बाद हाथी की शिक्षा आएगी, मधुहा, उसके बाद माखी, वो मधु निकालने वाला, शहद निकालने वाला, उससे शिक्षा लेंगे, हरिणों, उसके बाद हिरण से शिक्षा लेंगे, मीन, फिर मछली से, और फिर आएगी पिंगला, जो इस अध्याय का नाम है। तो पिंगला तक जो शिक्षा है ये 9 गुरु से शिक्षा इस अध्याय में है। उसके बाद क्रूरो अर्भक कुमारी शर कृत सर्प उर्णाना भी सो उपेक्ष कृत, ये जो 7 रहते हैं ये आगे वाले 9वें अध्याय में इनका अध्ययन करेंगे। तो अभी आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
हाँ जी,
धन्यवाद प्रभु जी। एक छोटा सा पॉइंट पूछना था, जड़ भरत की जो हम कथा सुनते हैं जब वो महाराज रघुगुणा को मिल रहे हैं,
हाँ,
तो जड़ भरत को अपना पुराना जन्म सब मालूम है और वो इस जन्म में वो कुछ नहीं कर रहे हैं।
हाँ, उसका उदाहरण जो है दो जगह उधर उसका उदाहरण देते हैं, अग्नि से अच्छिन्न, कभी अच्छिन्न है, कभी छिन्न रहता है और कभी स्पष्ट रहता है। तो रघुगण जी महाराज छुपे हुए थे, सब कुछ जानते थे, बड़े ज्ञान में परिपूर्ण थे, लेकिन छुपे हुए रहे, किसी से कुछ बात नहीं की, कभी प्रकट जब रहुगण जैसा योग्य पुरुष मिला तो उसको उपदेश दिया। तो अग्नि से शिक्षा में जड़ भरत का उदाहरण आता है, और अजगर वृत्ति से हमारे भागवत में उदाहरण है ऋषभ देव का। ऋषभ देव भगवान के अवतार होते हुए भी जंगल के अंदर अजगर वृत्ति से रहते थे, जो आए वो मिल जाए तो खाए, नहीं तो वहीं पड़े रहते थे। और उसकी ऐसी वृत्ति से फिर जैन धर्म का उत्पत्ति हुई। वहाँ जो उधर उदाहरण जो है अजगर वृत्ति वाला, वो ऋषभ देव के जीवन से। जड़ भरत का जीवन भी ऐसे एक दृष्टि से देखा जाए तो जो मिला वो खा लिया, नहीं मिला तो भूखा, ऐसे भी था। लेकिन उसका उदाहरण में सबसे अच्छा उदाहरण उसका जो लगता है, वो लगता है कभी अग्नि की तरह छुपे रहते हैं और कभी प्रकट होके, तो वो बहुत समय छुपे रहे लेकिन जब जरूरत पड़ी तो प्रकट होके और महाराज रहुगण को उपदेश दिया। ऐसे भी कहीं हमने सुना है कि वो रहुगुण वो हिरण ही था जो रहुगुण के होके आया, उसके साथ उसका स्नेह था और उसी को उपदेश देके उसका उद्धार किया। लेकिन जड़ भरत के तीन जन्मों की जो कथा है, यहाँ अग्नि से इसका उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। और ऋषभ देव जो है वो अजगर वृत्ति से रहते थे। ऐसे ये कई महात्मा ऐसे हैं, इसी वृत्ति से रहते हैं। कुछ लोग दे जाते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो भगवान का भजन करते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा बाबू जी।
हाँ जी, हाँ विष्णु बोलिए।
अच्छा, ये जो अंधकार प्रवृत्ति है इसको लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं आजकल कि भाई ये लोगों में आलस भर देती है।
कौन
रूपा जी भी अपने कल्चर में जो अजगर प्रवृत्ति है उसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इससे लोगों में आलस आ जाता है। और प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में कह रहे थे कि हर एक को कुछ काम करना पड़ता है, जो इवन सिंह है तो वो भी अपने कार्य के लिए काम करता है।
तो हमें
कॉन्ट्राडिक्टरी
हम कहे के काम इन यहाँ देखो, अजगर वृत्ति से शिक्षा क्या ली जा रही है कि इंद्रियों के सुख और भोग के लिए काम नहीं करना है, प्रचार के लिए। जैसे हमारे गोस्वामी 22 घंटे काम करते थे, 21 घंटे काम करते थे, 2 घंटे मुश्किल से, कभी 2 ढाई घंटे सोते थे, ढाई घंटे एक पहर 3 घंटे, कभी एक पहर से भी कम। और इतने बड़े सत शास्त्र लिखे हैं और इतना बड़ा प्रचार की सामग्री हमारे लिए, और इतने बड़े दिव्य मंदिर वृंदावन के अंदर ये सप्त देवाला गोस्वामी जो बना के गए हैं, ये सब राजपाठ के काम को छोड़ के अजगर वृत्ति से जीते थे। जो आता था वो खाते थे, कभी मिले कभी न मिले, कभी सोए कभी न सोए, लेकिन आलसी नहीं थे। उन्होंने आज हमारे लिए इतना सारा शास्त्रों का संकलन किया है। तो यहाँ जो अजगर की वृत्ति का ये नहीं है कि निकम्मे बनना है, और ज्यादा अधिक आध्यात्मिक कार्य में संलग्न होके अपने जन्म को सार्थक करके दूसरों को प्रचार के कार्य में देश विदेशों में भ्रमण करने के साथ कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी आजीविका के लिए काम नहीं कर रहे हैं। 2 टाइम की रोटी के लिए परेशान नहीं है। उनकी जो चिंता है वो लोग दुख क्यों भोग रहे हैं, उनको सुखी कैसे बनाया जाए, उनको भगवान की भक्ति कैसे सिखाई जाए, उनके मुख से भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए प्रेरणा कैसी देना चाहिए। तो यहाँ जो उदाहरण अजगर का है वो केवल एक दृष्टिकोण से है कि अपने इंद्रियों के सुख के लिए प्रयास करके समय को बर्बाद न करे, समय का सदुपयोग करके अपने उद्धार के लिए और दूसरों के प्रचार के लिए समय को सेवा में लगाए। हमारे प्रभुपाद जी के एक शिष्य कीर्तन करते थे 8 घंटे मृदंग बजा के, विष्णुजन स्वामी। तो कुछ लोग रास्ते से जाते हुए करें कि कुछ काम नहीं करते हो, धंधा नहीं करते हो, बस यहाँ मृदंग उठा के कीर्तन करते रहते हो। तो उन्होंने अपने हाथ को दिखाया जिसके अंदर मृदंग बजाने से वो चवानी बांधते थे, उंगलियों में चवानी बांधते थे, क्योंकि ढोल के किनारे को लगते लगते हाथ सारे पक गए थे। उसने अपने हाथ दिखाए, आप बोलते हम काम नहीं करते, ये देखो तुम्हारे इतना कोई मेहनत का काम किया है कि हाथ में गांठें आ गई है। तो ऐसा नहीं, हम काम करते हैं बड़े सबसे बड़ी जगह। आदमी कहता है सरकार की नौकरी मिल जाए तो अच्छी है क्योंकि सरकार बड़ी है, छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी का काम मिल जाए तो अच्छा है क्योंकि बड़ी कंपनी में ज्यादा जो है सुविधाएं होता है, जड़ा लाभ होता है। तो ये अजगर वृत्ति वाले साधु सबसे बड़े भगवान के काम में लगते हैं। जो सबसे बड़े के काम में लगते हैं उसको फिर सबसे ज्यादा सुविधाएं अपने आप लग मिल जाती हैं, उसको उनके लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो जो सबसे बड़े की सेवा करना चाहता है तो सबसे बड़ा तो भगवान है, उसकी सेवा में लगना चाहिए, और बाकी अपने को अजगर की तरह संसार के कामों के लिए उसमें इतना ज्यादा लगन के साथ समय को, वैसे भी आम आपको हम साधारण आपके लिए हमारे लिए बात कर रहे हैं, 24 घंटे आपको दिन रात में मिले हैं, 8 घंटे आप काम कर लो, 8 घंटे आप शरीर को संभाल लो, खाओ पियो सो 8 घंटे, 8 घंटे में नौकरी धंधा जो कुछ करना है अपना जीवन चलाओ, लेकिन 8 घंटे बाकी बचते हैं वो आपके आत्मचिंतन और भगवत भक्ति के लिए हैं। उन 8 घंटों का आप क्या करते हो इसका तो विचार करके देखो, 24 घंटे का ऐसे विभाजन करके देखो, 8 घंटे में आप सो लो खा लो नहा लो, इससे ज्यादा कोई आलसी होगा तो एक आधा घंटा और सोता होगा, कोई बात नहीं, 8 घंटे काम नौकरी धंधा कर लो, अपना पेट का गुजरान कर लो, कोई बात नहीं, गृहस्थी, बाकी जो बचते हैं 6-7-8 घंटे वो आपके अपने लिए है, वो आपके आत्मचिंतन के लिए है, वो आपके भगवत भक्ति के लिए है, उसको आप कहाँ लगाते हो ये बताओ, वो बेकार में जाते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा हानिकार काम है। तो यहाँ ये अजगर की वृत्ति तो बड़े बड़े जो परमहंस महात्माओं के लिए है, जो परमहंस महात्मा जो बहुत ऊंच कोटि के महात्मा है उनके लिए है, हमारे लिए तो कपोत वाली ग्रस्तों के लिए थी, और समुद्र भी बहुत बड़े गंभीर व्यक्तियों के लिए है, तो कल उसके ऊपर विचार करेंगे। आलसी की बात नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा काम करने की बात है, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने शरीर और इंद्रियों के लिए नहीं, आत्मा के लिए और परोपकार के लिए, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, उसके लिए काम करना है, काम तो कर ही रहे। हरे कृष्णा,
हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी,
हरे कृष्णा प्रभु,
प्रभु जी प्रणाम,
हरि बोल।
हाँ जी प्रणाम प्रभु जी, एक क्वेश्चन था।
हाँ जी, हाँ जी बोलिए।
हाँ प्रभु जी, ये चौथे कैंटो में जब हम पढ़ रहे थे पृथ्वी महाराज जी का,
हाँ हाँ,
तो इसका 23वें चैप्टर में जब पृथ्वी महाराज जी गोइंग बैक टू गॉडहेड में घर वो भगवान के धाम जाने की तैयारी में है, तो उसमें यहाँ पर एक श्लोक टेक्स्ट 5 में लिखा है कि पृथ्वी महाराज जी ने जब वानप्रस्थ ले लिया तो ऐसे ही तपस्या की जैसी आपने तपस्या हार्ड तपस्या के बारे में भी व्याख्यान किया है, वैसी तपस्या पृथ्वी महाराज जी ने की जब वो वानप्रस्थ के लिए चले गए थे।
हाँ जी, हाँ जी।
तो उसी टेक्स्ट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसी जो ऑस्टेरिटी है ये पॉसिबल नहीं है इस युग के अंदर।
हाँ जी ठीक है।
आप जो है आपके लिए जो ऑस्टेरिटी है वो हमने जो दी है वो यही है कि कृष्ण कृष्ण प्रसाद पाओ, 16 माला करो, रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करो, यही आपके लिए ऑस्टेरिटी है, तो इसको हम कैसे समझे?
वो तो ठीक है, एक युग है, जैसे 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 सत्य युग में ध्यान होता था, त्रेता में यज्ञ होता था, द्वापुर में पूजा होती थी, कलयुग में नाम है, तो ये युग का धर्म है, तो पृथु महाराज के समय में जो तपस्या थी वो अभी हम नहीं कर सकते, उनकी उम्र उस समय में बहुत ज्यादा थी, हजारों साल जीते थे, इसलिए तपस्या ऐसे हो सकती थी, तो हमारे लिए वही तपस्या जो अब निर्धारित शास्त्र ने और सदगुरु ने की है उसी को करनी चाहिए। तो ये अजगर की वृत्ति हम सिर्फ समझने के लिए है कि हमारे को हमारे भाग से जो हमारे भाग में है, जो हमने कर्मों की पहले कमाई की है, वो हमको समय के साथ मिल जाएगी, ज्यादा समय उस तरफ ना, ये कम से कम इतना ही काम करें जितना आप बोल रहे हैं, 4 नियम का पालन करना, 16 माला जपना और प्रसाद केवल खाना, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत से लोग कर नहीं पा रहे, इतना ही करें तो बहुत है इस युग में। वो एक हमारा भक्त पूछ रहा है कि लोग कहते हैं ज्यादा बैंक बैलेंस हो और ज्यादा प्रॉपर्टी हो तो ये सफलता है, ये भौतिक सफलता है, ये आध्यात्मिक सफलता नहीं है, मरने के साथ सब यहीं रह जाएगा, यहाँ अपने साथ तो सिर्फ भगवान का नाम जाएगा, आपने देखा है अंत समय कहते हैं राम नाम सत्य, कोई नहीं कहता है कि तेरा बैंक बैलेंस संग है, कोई नहीं कहता है कि तेरी गाड़ी मोटर संग है, कोई नहीं कहता है कि तेरा बंगला संग है, तो उस वक्त तो कहते हैं भगवान का नाम ही संग है, तो इसलिए कोई संसार की चीजें इकट्ठी करने वाला आप बुद्धिमान ज्यादा तो नहीं, आजकल के लोग उसको बुद्धिमान मानते हैं कि वो सब बुद्धू हैं, इसको बुद्धिमान मानते हैं, जो जो असल में बुद्धिमान है जिसके बाद भगवान है वो धन है, धन तो असली वो है जिसके पास भगवान है। हरे कृष्ण धन्यवाद।
हरे
बोल। हरे कृष्ण।
प्रभु जी एक क्वेश्चन।
हाँ जी बोलिए।
प्रभु जी मैं प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, जैसे आपने बोला था कि अगर आपको कोई बोनाफाइड प्रोसेस मिलता है तो हम उसको बहुत सीरियसली फॉलो करना चाहिए, बट हम लोग कई बार देखते हैं कि हम कई लोगों से मिलते हैं लेकिन उनके जो पार्टनर्स होते हैं हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड जो भी, उसमें से एक तो बहुत इंटरेस्टेड होता है पर दूसरा नहीं होता इतना। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि ये क्यों होता है, इज इट बिकॉज उनके अरब कर्मास हैं या कुछ है, तो एक तो ये क्वेश्चन है एंड सेकेंडली उनको कैसे हमें प्रीच करना चाहिए, शुड बी ट्राई कि एटलीस्ट जो चल रहा है बंदा जो सीरियस है उसी को कल्टिवेट किया जाए या वी शुड ट्राई कि दोनों को कल्टिवेट करने की कोशिश करें, कैसे करें?
असल में हर एक की जो जितनी सुकृति होती है उतना ही उसका पुण्य का उदय होता है, उतनी वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो उसकी सुकृति अभी तैयार नहीं हुई है, लेकिन कैसे भी थोड़ा बहुत उसको प्रसाद दे के बात करके उसको थोड़ी सुकृति उसकी बढ़ानी चाहिए, लेकिन जो इंटरेस्टेड है उसको आस्ते आस्ते जितना भी संभव हो इतना बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे प्रचार के कारण उसके घर में झगड़ा करा दें। इसलिए एक बैलेंस से प्रचार करना चाहिए जिसमें उसकी भक्ति का भी नाश नहीं हो और घर के जो वातावरण है उसके अंदर भी कोई दरार न पड़े, और जिसका कुछ अब पुण्य इकट्ठे ज्यादा नहीं है उसके पुण्य को बढ़ाने के लिए जाने अनजाने में उसकी सुकृति को बढ़ाना चाहिए, किसी और प्रकार की सेवा में लगा लेना चाहिए जिस सेवा से उसकी सुकृति और बढ़े, उसको प्रसाद देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, पुस्तक देना चाहिए, कभी कभी कोई फोटो देना चाहिए, इस प्रकार से उसका सुकृति बढ़ाते रहना चाहिए और जो इंटरेस्टेड है उसको भक्ति के कार्य में लगाना चाहिए।
ठीक है।
क्वेश्चन है छोटा सा मेरा।
हाँ जी।
कलयुग में हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए क्यों भक्ति करते हैं या कोई भी रिलीजियस प्रोसेस फॉलो करते
हैं? भक्ति सुविधा, अपनी सुविधा के लिए, बात यह है कि हम कंफर्ट जोन में रह के सारा काम करना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में जहाँ से हमको, वैसे दुनिया में कहते हैं बिना लाभ के कोई काम नहीं करता है, कोई पागल भी बिना लाभ के काम नहीं करता है, लेकिन हमने भक्ति से जो असली लाभ है उसका हमको ध्यान नहीं रहता है कि असली लाभ है भगवत प्रेम की प्राप्ति करना, तो उस लाभ का तो गौण हो जाता है, वो लाभ पीछे रह जाता है, हम थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा के लाभ को प्रायोरिटी देते हैं, उसी के लिए भक्ति करते हैं। तो ये असल में क्या है कि अभी ऐसे देखा जाए कि दुख निवृत्ति के लिए या सुख की प्राप्ति के लिए भक्ति करना ये भक्ति का उद्देश्य नहीं है, लेकिन प्रायः लोग जो है सामान्य धार्मिक विचारों को पुराने सुनते आ रहे हैं तो वो समझते हैं दुख निवृत्ति और सुख की प्राप्ति ही भक्ति का लक्ष्य है, लेकिन ये भक्ति का लक्ष्य नहीं है। भक्ति का लक्ष्य है हृदय में प्रेम जो पड़ा है उसको प्रकट करना साधन करने से, तो इसकी जानकारी नहीं है इसलिए लोग छोटी सी चीज के ऊपर, जिसको कहा जाए आप कन्वेंस जिसको कहते हैं, छोटे लाभ के ऊपर संतुष्ट हो जाते हैं भक्ति में, लेकिन बड़े लाभ को भूलना नहीं चाहिए जो हमारा लक्ष्य है उसको। प्राय हम सब भक्तों से पूछते हैं आपने भक्ति में ज्वाइन क्यों किया, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए, और आते आते वो तो गोल भूल गए और छोटे छोटे गोलों में अटक गए।
टॉपिक एक दिन लेना है
देखो भगवान की क्या इच्छा है। हरे कृष्णा।